प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे श्रोता मित्रों, मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और इस पुस्तक का लेखक सुलेमान है, जो इस पृथ्वी पर सूर्य के नीचे जो लोग रहते हैं उनके जीवन का अध्ययन करते हुए अपने जीवन में संतोष खोजने की कोशिश की है और अपने अनुभवों को उसने हमें लिखा है, और अब तक हमने उसके कई अनुभवों को देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे और हर एक प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया है। आपने हम मनुष्यों को भी बनाया है ताकि हम आपकी निकटता में आकर आपकी स्तुति और महिमा करें। आज हम धन्यवादित हैं कि आपने समय दिया है कि आपके वचन का अध्ययन कर सकें, सीख सकें कि मनुष्य क्या है। हाँ प्रभु, इस समय हमारी प्रार्थना हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए है जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हर एक के जीवन में आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, मनन करते हैं, आपके वचन को समझ सकें, सीख सकें, ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी भयंकर बीमारी में हैं। आप उन पर कृपा दृष्टि प्रदान करें, उन्हें छुए चंगाई दे, स्वस्थ करें, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से बलवंत करें ताकि हर एक जीवन आपको धन्यवाद देने पाए। इस समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ सर्वोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके 18 पद को निकाल लीजिए, जो 9 अध्याय का आखिरी पद है। यहां पर लिखा है, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। उसने इस अध्याय में जो कुछ कहा है उसका यह निष्कर्ष है, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। प्रभु यीशु अणुशक्ति से उत्तम है। मेरे प्रियो, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। वर्षों पूर्व मैं जब एक बार ट्रेन यात्रा कर रहा था, मैं कभी इसे नहीं भूलूंगा, वह सुबह जब हम साउथ के क्षेत्र में थे और जब हम स्टेशन के करीब पहुंच रहे थे तो हमने देखा कि सामने से एक और ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही है और इसे देख करके हम डर गए। और तब देखा गया कि ड्राइवर ने बड़ी चतुराई से उस ट्रेन को रोका और बहुत ही धीरे से और संभालते हुए हमें उस ट्रेन दुर्घटना से बचा लिया। मेरे प्रियो, कई बार हम इस बात को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता क्योंकि यह हाल ही की घटना है। हम देखना चाहते हैं कि एक यूनानी दार्शनिक के ज्योमिति के सिद्धांत के आधार पर क्या किया जाता है। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। कई बार हम विनाश की ओर बढ़ते हैं, परंतु बुद्धिमत्ता से हम काम करते हैं तो हम बच जाते हैं। आगे कहता है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मनुष्य के जीवन का प्रभाव बहुत अधिक होता है और गलत काम में तो उसका प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। इतिहास इसकी गवाही देती है। आदम ने पाप किया, जो प्रथम सृष्टि परमेश्वर के द्वारा था मनुष्य के लिए, और उसके पाप ने संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया। आकान ने पाप किया और परिणाम स्वरूप संपूर्ण जाति को हार का मुंह देखना पड़ा। विजय पाने के लिए उन्हें पहले आकान के पाप का निवारण करना पड़ा था। रहोबियाम के पाप के कारण इसराइल राष्ट्र के दो भाग हुए। हनन्याह और सफीरा ने कलिसिया में पहला पाप उत्पन्न किया और उसके बाद कलिसिया में पहले जैसा सामर्थ ना रहा। मेरे मित्रों, आपका और मेरा भी अन्यों पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। आप कुछ भी हो, आप प्रभाव डालने के स्थान पर हैं। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। प्रत्येक मनुष्य एक प्रचारक है। प्रचार करने से कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। एक शराबी युवक की माता ने मुझे बड़े दुख से कहा कि मैं उसके पुत्र को परामर्श दूं और उससे मसीह की चर्चा करूं। एक दिन मैंने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलवाया। उसने शराब पी थी, परंतु नशे में नहीं था। मैंने उससे कहा कि वह अपनी माता के दुख का कारण है और उसका जीवन कैसा नकारा है। उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, वह बैठा हुआ सुनता रहा। मैंने उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप एक प्रचारक हैं? वह खड़ा हुआ और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। आप मुझे प्रचारक नहीं कह सकते। वह अपने आप को कुछ भी कहलाने को तैयार था, परंतु प्रचारक नहीं। मेरे मित्रों, हम सब प्रचारक हैं। आप अपने आसपास के मनुष्यों में अपने जीवन से प्रचार करते हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि आप किस परिवार के सदस्य हैं, आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं, आपके जीवन से लोग जानते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि अपने सदाचार पर गर्व करने वाला, जो परमेश्वर से रहित है, वह एक महापतित मनुष्य है। वह परमेश्वर के मार्ग की बाधा है, क्योंकि उसका संदेश है, जैसा मैं जी रहा हूं वैसा जीवन जियो। मैं परमेश्वर के बिना जी रहा हूं और सब ठीक चल रहा है। इसके समान मृतक अवस्था और कोई नहीं है। आप कुछ भी हो, आप एक प्रचारक हैं। आपका क्षेत्र चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, आप प्रभाव अवश्य डालते हैं। आप अपने घर में एक प्रचारक हैं। एक पिता अपनी शराब की बोतल को छिपा कर रखता था, और जब जब उसे पीना होता है तब तब वह जाकर पी लेता था। एक दिन बर्फ जमा हुआ था, वह अपना बैग लगाने के लिए निकला तो उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा कि उसका छोटा बच्चा उसके पांव के चिन्हों पर अपने पांव रखता हुआ उसके पीछे आ रहा था। उसने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, मैं आपके चरण चिन्हों पर चल रहा हूं। उसने बेटे को घर भेज दिया और उस जगह पर जाकर अपनी शराब की बोतल फोड़ दी। उसे समझ में आ गया कि वह अपने बेटे को अपने चरण चिन्हों पर चलने नहीं देगा। मेरे प्रियो, आपके घर कोई तो आपके चरण चिन्हों पर चल रहा होगा। आप उसे कहां ले जा रहे हैं? आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप समाज के वृहद क्षेत्र पर प्रभाव डालते होंगे, आप व्यापार जगत में प्रभाव डालते होंगे। आपका प्रभाव आपके पड़ोसियों पर पड़ता है, समुदाय पर पड़ता है, स्कूल के विद्यार्थियों पर पड़ता है। कोई ना कोई आपको देखता है कि आप परमेश्वर के साथ सत्यनिष्ठ हैं या नहीं। क्या आपका आराधना में आना ऐसा है जैसा दुकान पर समोसा खरीदने जाना? क्या आपके जीवन से स्वर्ग पाने और नरक त्यागने का प्रदर्शन होता है? आपके जीवन का प्रभाव पड़ता है, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पत्रस ने पेंतिकोस के दिन अत्यधिक प्रभावी उपदेश सुनाया था। अन्द्रिया सोचता होगा, यह मेरा भाई है जिसे मैं मसीह यीशु के पास लाया था। यह अन्द्रियास का प्रभाव था। आज आप मनुष्य को किसकी ओर देखने के लिए प्रभावित कर रहे हैं, स्वर्ग या नरक? यदि आप नरक जाना चाहते हैं तो यह आपकी इच्छा है, परंतु एक छोटे बच्चे को नरक का मार्ग दिखाने का अधिकार आपको नहीं है, न ही आपके परिवार और मित्रों को वहां पहुंचाने का अधिकार आपको दिया गया है। आप जाना चाहें तो ठीक है, परंतु अन्यों को वहां पहुंचाना एक अत्यधिक जघन्य अपराध है। मेरे प्रियों, ध्यान रखें, प्रभाव एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 10 में आते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जीवन में अन्याय मध्य मार्ग अपनाने पर विवश करता है। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। ध्यान दीजिए, जीवन इस तथ्य के उदाहरणों से भरा है, एक रात अंधकार, रोग और मृत्यु ला सकती है। मेरी कलीसिया में एक सदस्य ने मुझे बताया कि वह एक मसीही परिवार में बड़ा हुआ है और उसने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। परंतु जब वह नौकरी के लिए घर से बाहर गया, तब एक रात मित्रों की संगति में बिताई। बस एक ही रात और उसे यौवन रोग लग गया, जिसके कारण उसे एक अति प्रिय लड़की के साथ मंगनी रोकनी पड़ी और विवाह के लिए वर्षों रुकना पड़ा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यह त्रासदी है। एक माँ अपने पुत्र को शिक्षा देने में 21 वर्ष लगाती है और एक चतुर लड़की 5 मिनट में उसे मूर्ख बना देती है। इसी से किसी का जीवन नष्ट हो जाता है। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 पद में लेखक कहता है, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, वह हर काम संपूर्ण मन से करता है, पीछे नहीं हटता, परंतु मूर्ख उसका मन इसका विपरीत रखता है। वह किसी भी काम को मन लगा करके नहीं करता है, और जो भी करता है उससे वह हानि ही प्राप्त करता है। मेरे मित्रों, आप जो भी काम करें पूरे मन से करें। यदि आप परमेश्वर की सेवा करें तो आनंद और उत्साह से करें। मसीही जीवन कोल्हू के बैल के समान न बनाए, उसे महत्वपूर्ण बनाए। आप जो भी काम करते हैं उत्साह से करें, आनंद से करें, ताकि आप इस बात को जानें कि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूं। मेरे प्रियो, मूर्ख को नाम पत्र लटका कर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं मूर्ख हूं। उसे बस अपना मुंह खोलना है और सब जान लेंगे कि वह मूर्ख है। कभी कभी तो उसे अपना मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी सामुदायिक सभाओं में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति बड़ा अच्छा सुझाव देता है और मैं चकित होकर सोचता हूं, ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पड़ोसी ऐसा बुद्धिमान है। एक और व्यक्ति खड़ा होता है और अपनी राय प्रस्तुत करता है। मैं अपने पास बैठे मनुष्य को देखता हूं और भौहें सिकोड़ता हूं। बाइबल उसे मूर्ख कहती है और वह सब पर प्रकट कर देता है कि वह क्या है। सबोपदेशक 10 उसके 4 पद में लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। सूर्य के नीचे धरती पर रहने वाला मनुष्य शांति लाने के लिए धीरज धरता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप लड़ नहीं सकते तो समझौता कर लें ताकि आप जीवित रह सकें। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मेरे मित्रों, आज के युग में भी ऐसा ही होता है। पाप को सम्मान दिया जाता है। एक समय था कि पाप को गंदा और घृणित समझा जाता था, उसे नीच और तुच्छ जनों का काम माना जाता था। आज पाप बड़े सम्मान का पात्र है और उसे प्रतिष्ठा भी प्रदान की जाती है। उसे टीवी पर आदान प्रदान किया जाता है, उसे आदर दिया जाता है और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। जब मैं छोटा था तब हम जानते थे कि किसी भी समूह में जब किसी प्रकार के नाटक किए जाते थे या कुछ सभाएं की जाती थी मनोरंजन के लिए, तो वहां पर यदि कोई स्त्री अपने कपड़े उतारे तो समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जाता था। परंतु आज उसे कला का नाम दिया गया है, उसे इज्जत दिया जाता है। आज पाप को ऐसा सम्मान दिया जाता है। मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी साधारण मनुष्य या साधारण मसीही जन का साक्षात्कार टीवी पर देखा है? ये वे लोग हैं जो अपने समुदाय और अपने समाज में मूल्यवान योगदान देते हैं। इनका साक्षात्कार टीवी पर नहीं आता है, वे दीनता का स्थान ग्रहण करते हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। पापियों और असंगत मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका जीवन क्या है, उससे उन्हें लाभ होता है। सवोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। परिश्रम करना, पैसा बचाना, देर तक पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। आपके आसपास कहीं मूर्ख को लाखों रुपए वसीयत में मिल जाएंगे। कभी कभी मूर्ख घोड़े पर चलता है और राजकुमार पैदल चलता है। मैं अनेक अच्छे मसीही जनों को जानता हूं और मुझे अनेक दीन मनुष्यों से भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ पैसे वाले हैं, परंतु वे छोटे घरों में ही रहते हैं, उन्हें अनदेखा किया जाता है। ये लोग राजकुमार हैं जो पृथ्वी पर दासों के समान चलते हैं। यह कैसा अद्भुत नजारा है। सवोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो गढ़ा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। मेरे मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि आप पाप करके बच जाएंगे, विशेष करके यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप पाप करके बच नहीं सकते। परमेश्वर तुरंत दंड न दे, परंतु एक दिन आपको दंड अवश्य मिलेगा। आपको बस प्रतीक्षा करना है। मैं वर्षों से यह देखता आ रहा हूं कि विश्वासी गलत काम करके सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, परंतु परमेश्वर एक ना एक दिन उन्हें दंड देगा। आप बाइबल में देखें कि दाऊद ने पाप किया, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसे उसका दंड मिला। और तब हम देखते हैं कि उसने भजन संहिता 51 को लिखा, जहां पर उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। मेरे मित्रों, आज आप कोई भी क्यों ना हो, हो सकता है कि आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके मित्र, यहां तक कि आपके कलीसिया के लोग या आपके मित्रगण जो नजदीकी हैं, आपके जीवन के उन पापों के बारे में नहीं जानते हैं और आप सोचते हैं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर इस बात को जानता है। वह इस इंतजार में है कि वह आपको एक दिन इसका दंड दे। मेरे प्रिय मित्र, आज आपके पास में मौका है कि आप अपने इन पापपूर्ण जीवन से दूर हट जाएं, प्रभु यीशु के पास आएं और अपने जीवन के उन पापों को स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में उठा लिया। जिस पाप की सजा मुझे और आपको, हम सारे मानव जाति को मिलनी थी, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उस सजा को उसने उठा लिया ताकि आप और मैं उस भयानक मृत्यु से, उस दर्द से बच जाएं। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर प्रभु यीशु के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे कारण सिर्फ प्रभु यीशु ही क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने हमारे पापों को उठाया, मर गया और फिर जी उठा। आज भी वह जीवित है और स्वर्ग में है और वह आपको क्षमा कर सकता है। क्यों ना आप इस समय एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लें, ताकि आप उस भयानक दंड से बच जाएं। सवोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। ध्यान दीजिए कि उन दिनों पत्थर हटाने का अर्थ था भू संपदा का चिन्ह हटाना। यह फिर से कहना है कि पाप करके कोई बच नहीं पाएगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि आप किसी के साथ भू संपदा की बेईमानी करते हैं, तो परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि आपको भी चोट लगे। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा कि हम बदला ना लें। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि आप जो कुछ करते हैं वही आप काटते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप मकई की खेती करके चना नहीं काटेंगे, गेहूं नहीं काटेंगे। यदि आपने मक्का की खेती की है तो आप मक्का का ही फसल काटेंगे। आज आपके लिए और मेरे लिए यह बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ हम करते हैं उसका प्रतिफल मुझे और आपको भोगना होगा। परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। आप जो कुछ भी करें, आप यह ना सोचें कि कोई इसे देखता नहीं है। परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है। आज हम अपने जीवन में इस बात को सोचें और अपने जीवन की ओर झांक करके देखें कि हम कहां पर हैं। मेरे प्रियो, आइए आज इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और प्रभु से कहें कि प्रभु, जो जीवन मैं जी रहा हूं वो अच्छा नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि मैं आपके मार्ग पर आ जाऊं, आप मेरी सहायता करें। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। यहां पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है और मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेकर अपने जीवन को आशीषमय बनाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जल्दी दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र